ओम शांति, ओम शांति। सभी एक बार जोर से बोलेंगे ओम शांति। आज हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी पहुंच चुके हैं। हम सभी आदरणीय दीदी जी का हाथ हिलाकर एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। स्वागत है दीदी जी आपका आज की सोशल विंग की सभा में। और आज आप मेडिटेशन जो हमारा कोर्स है उसका दूसरा सत्र करने जा रहे हैं, तो मैं आदरणीय दीदी जी का थोड़ा संक्षिप्त में आप सबको परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर सविता दीदी जी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की परीक्षा पूरी करके आपने उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर आदि में अपनी मेडिकल सेवाएं दी हैं। सन 1991 से आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में माउंट आबू में आप चिकित्सक के अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। 2000 तक आपने ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दी। 2000 से लेकर 2007 तक जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व संस्था की प्रशासिका थी दादी प्रकाशमणि जी, आप उनके व्यक्तिगत चिकित्सक एवं सहायक भी रहे। 1974 में आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और तब से ही आप अथक सेवाएं इस संस्था में दे रहे हैं। आपने पूरे विश्व में यूके, यूएसए, जापान, चीन, हांगकांग, यूएई, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, अनेक ऐसे कई देशों में आपने आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए जन जन तक ईश्वर का संदेश देने के लिए आप पूरे विश्व का भ्रमण करने के निमित्त बने। हमारा राजयोग एजुकेशन रिसर्च सेंटर के अंतर्गत हमारे 19 विंग्स बने हुए हैं, उनके एक वोमेन विंग है, महिला विंग है, आप उसके मधुवन कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने बेटी बचाओ सशक्त बनाओ, नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा ऐसे कई कैंपेन आपने कोऑर्डिनेट किए हैं। ऐसे प्रतिभाशाली डॉक्टर सविता दीदी जी आज हम सबके बीच में हैं और आज हम सबको उस विश्व नियंता जिसको हम सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है, कैसे वो दिखते हैं, कैसे हैं वो, उनका परिचय हम सबको देंगे।
आत्मा का लेसन
है, आत्मा का है। सॉरी, आज हमारा आत्मा का चैप्टर है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, कैसा हमारा अपना अस्तित्व है, वो आज हमारे बीच में डॉक्टर सविता दीदी जी सुनाएंगे।
ओम शांति, ओम शांति। आपके ये प्रातःकालीन सत्र सम्मेलन में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य शिक्षा है सहज राजयोग उससे संबंधित रहेंगे। तो आज हम राजयोग अभ्यास के इस सत्र में समझेंगे कि हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है। जब हम योग की बात करते हैं तो योग शब्द भारतीय संस्कृति के लिए कोई नया शब्द नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में योग का अभ्यास किया जाता रहा है। ऋषि मुनि महात्मा इस योग अभ्यास से अपने जीवन में अनेक लाभ अनुभव करते थे। वो योग से मन की शांति का अनुभव करते थे, योग से मन को परमात्मा में एकाग्र करते थे, अपना इंद्रिय संयम करते थे, स्वस्थ रहते थे, दीर्घायु होते थे। और आज वर्तमान में भी योग लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में भी हमें मन की शांति की, मन की एकाग्रता की और अपने इंद्रियों के संयम की आवश्यकता है। योग अभ्यास से हमारा व्यवहार और संस्कार परिवर्तन भी होता है। अगर हमारे संबंधों में कोई मन मुटाव है, मतभेद है, तो उन्हें भी समाप्त करके हम अपने संबंधों को मधुर बना पाते हैं। तो योग शब्द संस्कृत के युच धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है संबंध या मिलन। जैसे हम वियोग जब कहते हैं तो उसका अर्थ होता है अलग हो जाना। जब हम सहयोग कहते हैं तो उसका अर्थ होता है जब दो मिलकर कार्य करते हैं। संयोग हम कहते हैं यानी कोई अचानक हमें मिल जाए या प्राप्ति हो जाए तो उसे हम संयोग कहते हैं। तो योग शब्द मिलने के अर्थ में ही प्रयोग होता है। अंक गणित में योग का अर्थ होता है जोड़, अंकों को जोड़ना, वो योग कहलाता है। तो ये तीन स्तरों पर हो सकता है, भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। भौतिक स्तर पर योग है जब हम दो वस्तुओं को मिलाते हैं, जोड़ते हैं। मानो दो तारों को हम जोड़ते हैं तो करंट फ्लो होता है, उसे हम कनेक्शन कहते हैं, वो भी जोड़ है। ऐसे ही यदि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दो तत्व हैं, इन्हें मिलाते हैं तो पानी बनता है। जो भी विज्ञान पढ़ते हैं वो जानते हैं, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने के बाद जो पानी बना उसे हम यौगिक कहते हैं। से ही दूध में या दही में हम चीनी मिलाएंगे तो वो मीठा हो जाता है, चीनी का गुण उसमें आ जाता है, वो भी एक प्रकार का योग है। तो ये भौतिक योग है। दूसरा है मानसिक स्तर, मन जहाँ जुड़ा हुआ है। अब हमारा मन या तो व्यक्ति में होता है, किसी भी व्यक्ति को हम याद करते हैं तो उस समय हमारा योग उस व्यक्ति के साथ है, या हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो हमारा योग उस वस्तु के साथ हो गया, या कर्म में हम अपने मन को लगाए हुए होते हैं तो कर्म में हमारा योग हो गया। तो ये तीन स्तरों पर हमारा मन सदा ही रहता है, यानी इस स्तर पर हम सभी योगी हैं। मन कहीं ना कहीं लगा हुआ ही है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं तो मन व्यक्ति, वस्तु, कर्म से निकलकर जब ईश्वर में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है, तो फिर उसे हम राजयोग कहते हैं। राज शब्द इसमें श्रेष्ठता का प्रतीक है, यानी ये सर्वश्रेष्ठ संबंध है। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च शक्ति है, उनके साथ संबंध, वो सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है और ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है। अब यूं तो दुनिया में सांसारिक संबंध भी हैं हमारे, और सांसारिक संबंधों में भी हमें प्राप्ति होती है, उनसे हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, सुख मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन ये परिवर्तनशील है क्योंकि व्यक्ति की मनःस्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। जो व्यक्ति आज हमें सुख देता है वो हमें कल दुख भी दे सकता है। जो व्यक्ति हमें प्रेम देता है वो कभी हमसे नफरत भी कर सकता है, या जो हमारा सम्मान करता है वो कभी हमारा अपमान भी कर सकता है। हम सब अपने जीवन में अनुभवी हैं कि संबंध तो बदलते रहते हैं, सांसारिक संबंध तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो ईश्वर के साथ हमारा संबंध है वो शाश्वत है, क्योंकि भगवान कभी नहीं बदलता, वो सदा ही एक जैसा है, वो सदा ही शांति का दाता है, वो सदा ही प्रेम का सागर है, वो सदा ही सुख का दाता है। और इसीलिए हमारे जीवन में ये संबंध भी महत्वपूर्ण है। हम सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा से या जो हमारे पूर्वज करते आए उस विधि से हम परमात्मा को याद करते हैं। और विशेषकर दुख के समय जब जीवन में कष्ट आता है तब हम भगवान को याद करते हैं, और इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। लेकिन हमारी शिकायत होती है कि मन भगवान में नहीं लगता है, मन भटक जाता है। तो क्यों नहीं लगता है भगवान में मन? उसके मुख्य दो कारण है। पहला कारण है अज्ञान। हमें परमात्मा का सत्य परिचय नहीं है, यानी हम जो भी जानते हैं परंपरा से जानते हैं, लेकिन उनका सत्य परिचय हमें नहीं है। तो जब तक दुनिया में भी हम किसी से परिचित नहीं हैं, हम उनको याद नहीं कर सकते। आज संसार में अरबों लोग रहते हैं, लेकिन हमारे परिचय के दायरे में या हम कहेंगे हमारे संबंध में कितने हैं, और उसमें भी हम किनको याद करते हैं? जो हमारे समीप संबंध में हैं। ऐसे ही जब परमात्मा से हमारा परिचय और संबंध होता है तब उनको याद करना हमारे लिए सहज होता है। तो आप राजयोग में परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करेंगे। और दूसरा कारण है कि हमें स्वयं की भी पहचान नहीं है, स्वयं की भी सत्य पहचान नहीं है, यानी हम जो अपने आप को समझते हैं। आज बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो जरूर कहीं हम अपने आप को नहीं जानते हैं तब ये बात कही गई। तो इसीलिए कई जिज्ञासा भी व्यक्त करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या परिचय है, क्या यही हमारा अस्तित्व है जो हम अपने आप को अपने शरीर के रूप में देखते हैं मानते हैं, या इससे परे भी हमारा कोई अस्तित्व है। जैसे स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अपने गुरु के पास गए, रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो वो पीतर थे, तो उन्होंने द्वार खटखटाया तो अंदर से ही गुरु ने पूछा कौन है। तो विवेकानंद, उस समय विवेकानंद नहीं थे, वो नरेंद्र थे, तो उन्होंने जवाब दिया मैं यही जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो उनके उत्तर से ही रामकृष्ण समझ गए कि जिस शिष्य का मुझे इंतजार था वो आज मेरे द्वार पर पहुंच गया है। तो ज्यादातर हम अपने आप को जो समझते हैं, अगर कोई हमसे परिचय ले तो हम कहेंगे मेरा नाम ये है बहन जी, हम इस स्थान पर रहते हैं, हम ये व्यवसाय करते हैं, हमारी ये उपलब्धियां हैं, अगर हमारी कोई उपलब्धियां हैं। तो फिर जब हमारा जन्म हुआ इस दुनिया में, तब तो हमारा नाम नहीं था, हमारा नाम तो कुछ समय के बाद रखा गया, तो भी हम थे। जो भी हमारा व्यवसाय है या उपलब्धियां हैं, वो भी काफी वर्ष के बाद हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले भी तो हम हैं। जिस स्थान पर हमारा जन्म होता है, वो भी जन्म स्थान बदल जाता है, हम कहीं के कहीं चले जाते हैं, तो वो भी हमारा परमानेंट परिचय तो नहीं है। तो फिर हम कौन है? तो ये हमारा बाह्य जगत से संबंध रखने वाला परिचय, यानी सांसारिक परिचय है। हम केवल बाह्य जगत में नहीं जीते, हमारा अंतर जगत भी है। तो हमारा पूर्ण परिचय होगा जब हम अपने अंतर जगत को भी समझते हैं। तो जब हम अपने भीतर जाते हैं, तो विचार, भावनाएं, स्मृतियां और वृत्तियां, ये हमारा अंतर जगत है। विचार, भावनाएं, स्मृतियां और वृत्तियां जो सूक्ष्म है, और इससे हम कई नाम देते हैं, आत्मा, रूह, कॉन्शियंस, प्राण, प्राण ऊर्जा या स्प्रिट। तो ये नाम हम, इन चार जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, उन्हें हम देते हैं। ये चेतना ही हमारे इस शरीर को जीवन देती है। शरीर अपने आप में जड़ है, हड्डी मांस का बना हुआ ये शरीर है, और जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है, जब चेतना इससे जुड़ती है, तब हम कहेंगे कि वो मानव है। लेकिन आत्मा सूक्ष्म है, इसीलिए हमें स्थूल चक्षुओं से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम अनुभव से उसे जानते हैं। जैसे संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नेत्रों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव से हम उन्हें जानते हैं। हवा है, हम नहीं देख सकते, लेकिन अनुभव से पता है कि हवा चलती है। ऐसे ही खुशबू को हम अनुभव से जानते हैं। आज जितने भी इनविजिबल कम्युनिकेशन है, आज चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड किया, उसका पूरा कंट्रोल पृथ्वी से था, तो दिखाई देने वाला तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तरंगे हैं पृथ्वी से जो उसको कंट्रोल कर रही हैं, या जो भी हम रिमोट प्रयोग करते हैं आज। तो ऐसे ही आत्मा भी सूक्ष्म शक्ति है जो हमारे नेत्रों की क्षमता से परे है। आज कोरोना हम सब जानते हैं, इतना सूक्ष्म वायरस जो नेत्रों से भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इतना शक्तिशाली कि अगर वो इन्फेक्शन कर दे तो वो जानलेवा है। कितने लोगों के प्राण चले गए उस कोरोना इन्फेक्शन के कारण, लेकिन कितना सूक्ष्म जीव है। तो ऐसे ही आत्मा भी इतनी ही सूक्ष्म है जो हमें नेत्रों से नहीं दिखाई देती, लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि वो इतने हमारे बड़े शरीर, जो बड़े से बड़ा 6 फुट उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति है। सोल माना सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। आत्मा जो है वो एक सूक्ष्म प्रकाश बिंदु की तरह है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इसे हम कहते हैं, मनुष्य को हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूमस से आया है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी। यानी ये जो भौतिक शरीर है, ये पंच तत्वों से बना हुआ, हड्डी मांस का बना हुआ पुतला है। और बीइंग माना कॉन्शियसनेस, यानी चेतना, और वो चेतना जब इसमें प्रवेश होती है, तब ह्यूमन बीइंग हम उसको कहते हैं। हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, मैं और मेरा। सारा दिन ये दो शब्द हम कितनी बार, शायद अनगिनत बार बोलते हैं। तो इसमें मेरा शब्द जो है वो जो हम प्रयोग करते हैं उसका वाचक है, और मैं शब्द यानी मैं कौन, उसे प्रयोग करने वाली मैं कौन हूँ। मानो हम जिस स्थान पर रहते हैं उसे मेरा घर कहते हैं, तो वो मेरा घर है जिसे मैं प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन मैं घर नहीं हूँ। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं घर हूँ, ये मेरा हाथ है। हम कहते हैं मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूँ। अगर हमें शरीर में कोई तकलीफ है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहेंगे मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैं सिर दर्द हो रहा हूँ नहीं, मेरा पेट दर्द हो रहा है तो मैं पेट दर्द हो रहा हूँ, हम ये नहीं कहते। या हमने घड़ी पहनी है तो मेरी घड़ी है, मैं घड़ी हूँ, हमें पता है कि मैं घड़ी नहीं हूँ। तो कहने का भाव है कि मेरा शब्द जो है वो आत्मा जिसे प्रयोग कर रही है उसका वाचक है, तो ये मेरा शरीर यानी मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं शब्द आत्मा का वाचक है, मैं आत्मा हूँ जिसने इस शरीर को धारण किया है। आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, ये कर्मेंद्रियां उसे मिली हैं कर्म करने के लिए। आज कोई सीरियस मरीज अस्पताल में आता है और डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसका जीवन बचा पाएं, और दुर्भाग्य से वो उसे नहीं बचा पाते, तो क्या कहते हैं? अब ये नहीं कहते पेशेंट को ले जाओ, आप कहेंगे बॉडी को ले जाओ। तो अब वो पेशेंट क्यों नहीं है, अब क्यों बॉडी है? क्योंकि अब उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। हम चाहे उनके लिए कितना भी रो लें, उनके लिए कितना भी प्रेम दिखाएं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आत्मा नहीं है। तो आत्मा ही शरीर के द्वारा अनुभव करती है, सुख दुख का अनुभव करना या प्रेम का अनुभव करना, जो भी हमारी भावनाएं हैं वो इस शरीर के माध्यम से ही व्यक्त होती हैं। आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किसी की आंखें जीवित में लगाते हैं, जो भी अंग हैं, इस शरीर की जब मृत्यु होती है तो अंगों की मृत्यु होने में समय लगता है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ, थोड़ा समय के बाद होती है। तो उसी समय में डॉक्टर जो भी अंग दूसरों में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं वो निकाल लेते हैं आज्ञा से, यानी अगर वो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अंग दान करके गया है तो फिर उसकी किडनी, उसकी लिवर, उसका हार्ट, वो भी जीवित व्यक्ति को डोनेट किया जाता है। तो ये देखने में आता है कि वो अंग जब जीवित व्यक्ति में लगाए जाते हैं, वही आंखें जो डेड बॉडी में नहीं देख रही, भले ही आंखें खुली होंगी पर नहीं देखती हैं, लेकिन जब जीवित व्यक्ति में लगाई जाती हैं तो वही आंखें देखने लगती हैं, वही किडनी उस जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करने पर काम करने लगती है। तो इसका मतलब उसमें आत्मा है जो उन अंगों से कार्य कर सकती है, और उस डेड बॉडी में भले वो अंग जीवित हैं लेकिन आत्मा नहीं है, तो वो अंग अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आत्मा का प्रमाण है, माना शरीर को जो जीवन मिला है वही आत्मा के होने का प्रमाण है। लाइफ इटसेल्फ इज द प्रूफ ऑफ सोल। तो आत्मा चेतन शक्ति है, अजर अमर अविनाशी है, अभौतिक है। आत्मा के लिए हमारे यहाँ गीता में भी कहा गया, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, वो अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, उसे केवल परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसे ही आत्मा भी एक शक्ति है, एक पावर है, और वो भी ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, वो सदा ही है, इटर्नल है माना, वो सदा ही है, लेकिन इस शरीर को वो धारण करती है, छोड़ती है और फिर पुनर्जन्म ले लेती है। आज हम देखते हैं जितनी भी एनर्जीज हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बिजली है जिससे पंखा चलता है, लाइट चलती है, ये सब ये एनर्जी है, और एनर्जी भी इनविजिबल होती है। आज हम जो कार्य उससे हो रहे हैं उसे हम देख सकते हैं, लेकिन हम बिजली को नहीं देख सकते, और अगर बिजली चली जाए तो ये सब साधन काम करना बंद कर देते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें ये साधन काम नहीं करेंगे जब तक कि बिजली नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा जो शक्ति है इस शरीर में जब तक है वो प्राण शक्ति, तब तक सभी अंग अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब वो शक्ति निकल जाती है, आत्मा शरीर से चली जाती है, तो यही सब अंग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। तो हम कहते हैं वो चला गया, कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कौन चला गया, शरीर तो यही है। फिर हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास करते हैं, यानी पाठ करते हैं, मौन रखते हैं, कई विधियां करते हैं, तो किसकी शांति, शरीर तो शांत है ना, तो किसकी शांति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो जरूर आत्मा। तो हम ज्यादातर आत्मा शब्द का प्रयोग तभी करते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी हमें आत्मा का संपूर्ण ज्ञान या पूरी समझ नहीं है। तो स्वयं परमात्मा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया है वो हम राजयोग में समझते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है जिसके तीन शक्तियां हैं, तीन अंग हैं हम कह सकते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे शरीर अनेक अंगों से बना है, केवल मस्तिष्क को हम शरीर नहीं कहेंगे, केवल हृदय को हम शरीर नहीं कहेंगे, केवल फाफड़ों को या हमारे पाचन तंत्र को, लेकिन ये सभी अंग मिलकर काम कर रहे हैं तब ये शरीर को जीवन मिला है। ऐसे ही आत्मा के ये तीन अंग हैं और तीनों ही मिलकर कार्य करते हैं तब आत्मा है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन आत्मा की शक्तियां हैं। मन जो है वो हमारी सोचने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है, अनुभव करने की शक्ति है। मन ही कल्पनाएं करता है, आइडियाज बनाता है। मन बहुत सूक्ष्म है, जैसे हम कहते हैं हमने आत्मा को नहीं देखा, हम आत्मा को नहीं देख सकते, ऐसे ही मन आत्मा की इन शक्तियों को भी हम नहीं देख पाते। किसी ने अपने मन को देखा है, क्या कहेंगे, किसी ने अपने मन को देखा है, पर हम क्या कहेंगे, मन नहीं है। मन सारा दिन तो क्या, सोते समय भी मन अपना कार्य करता रहता है, क्योंकि सपने भी हम किससे देखते हैं, मन से ही देखते हैं। तो मन सबसे तीव्र गति वाली हमारी शक्ति है, कहते हैं कि ये सबसे पावरफुल है, लेकिन सबसे कम समझी गई आत्मा की शक्ति है। और अगर एक बार हम मन की शक्ति का विकास कर लेते हैं तो इंसान असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। तो इसकी गति प्रकाश की गति से भी तेज है। मन को समय, स्थान, व्यक्ति का कोई बंधन नहीं, किसी भी समय में हमारा मन जा सकता है। हम बीती हुई बातों को याद कर सकते हैं, कब मेरे जीवन में क्या हुआ, किसने क्या किया, क्यों किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये सब क्या सोचते हैं हम, बीती हुई बातें। तो भूतकाल में जा सकता है, भविष्य की कल्पनाएं कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जो भी, या चिंता करते हैं क्या होगा कैसे होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा, तो हम भविष्य में भी चले जाते हैं। किसी भी स्थान पर भी व्यक्ति जा सकता है मन से। अब मैं घर कहूं मानो तो मन कहाँ चला गया, जहां आपका घर है, जहां से आप आए हैं, सब अलग अलग शहरों से अलग अलग स्थानों से आए हैं, पर मन को घर पहुंचने में कितना समय लगता है। कई बार हम शरीर से बैठे होते हैं लेकिन मन से नहीं बैठे होते, मन कहीं बाहर घूम रहा होता है किसी भी दूसरे स्थान पर। हमारा मन मिनट्स में चला जाता है, मिनट्स या सेकंड्स में चला जाता है। तो हो सकता है ना, आप में से कई होंगे जो बीच बीच में कई बार फिर से अपने अपने स्थान पर जाकर के फिर हॉल में पहुंचते होंगे मन से। ऐसे ही व्यक्ति का भी बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति को हम कभी भी याद कर सकते हैं। तो ऐसा मन जिसके लिए हम कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। आज हम जो भी हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। अगर हम अच्छे विचार रखते हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि हर एक कर्म का बीज एक विचार होता है। और अगर मेरे बुरे विचार हैं तो मेरे कर्म भी बुरे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम करें, क्योंकि उसमें हमारा बुद्धि और विवेक भी काम करता है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा हम सोचते हैं, इसलिए जन्म से कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, यानी कोई संत नहीं होता, कोई चोर डाकू नहीं होता। लेकिन जिस किसी के विचार जिस दिशा में चलते रहते हैं वैसा ही उसका जीवन फिर ढलता जाता है और बनता जाता है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में देखा गया कि हम एक मिनट में 25 से 30 विचार करते हैं और सारे दिन में हम 25,000 से 30,000 तक विचार करते हैं। और ये विचार चार प्रकार के होते हैं, क्योंकि यदि हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, अपने मन को नियंत्रण कर पाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। तो यदि हम अपने मन को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम मन को कैसे एकाग्र करें। तो चार प्रकार से हम सोचते हैं सारे दिन में। कुछ हमारे आवश्यक विचार होते हैं, करीब 70% विचार हमारे कार्यों से संबंधित होते हैं, जो आवश्यक विचार हैं। मानो अगर मुझे भोजन करना है तो मुझे विचार आएगा भूख लगी है, फिर हम भोजन के लिए प्रयास करेंगे, यानी पहले मन में विचार आएगा फिर हम वो कार्य करेंगे। दूसरे प्रकार के विचार हैं फालतू विचार। जब हम कार्य नहीं कर रहे तभी भी मन तो फुर्सत में नहीं है। हम काम से फुर्सत में हो सकते हैं लेकिन मन फुर्सत में नहीं होता है, मन तो अपना कार्य करता ही रहता है। तब उस समय हम, जैसे अभी कहा हमने, हम इधर उधर की बातें, इसकी उसकी बातें, बीती हुई बातें, भविष्य को लेकर के सब कुछ भी सोचते हैं, पर ये सब हमारे समय और शक्ति को व्यर्थ गंवाते हैं, इसीलिए इन्हें वेस्ट थॉट्स कहा गया। पास्ट के लिए कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर के लिए कहते हैं फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट। जो बीत गया वो लौट कर तो कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उन्हें सोचते रहते हैं तो हमारा समय और शक्ति हम व्यर्थ गंवाते हैं। और यदि हम भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं तो भी हम समय और शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं, क्योंकि वो तो वर्तमान पर निर्भर है। तो इसीलिए प्रेजेंट को गिफ्ट कहा गया है। प्रेजेंट प्रेजेंट गिफ्ट ही होता है। तो प्रेजेंट में रहना जीवन में एक उपहार की तरह है, ये जीवन जीने की कला है। तीसरे प्रकार के जो विचार होते हैं वो है नेगेटिव, बुरे विचार, कुविचार, ये भी मन में आ जाते हैं। लेकिन 5% विचार ही हमारे नेगेटिव होते हैं, पर वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। नेगेटिव विचार हम कहते हैं क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भावना, अहम भाव, प्रतिशोध की भावना, भय, निराशा, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं जो परिस्थितियों अनुसार, व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार मन में निर्माण होती हैं। और जब हम मन इनके वश हो जाता है तो मन की शक्ति कई गुना नष्ट हो जाती है, यानी मन कमजोर पड़ जाता है। जैसे क्रोध है, मानो सबसे कॉमन नेगेटिव इमोशन है गुस्से में आ जाना। कोई भी कारण से हम गुस्से में आते हैं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने गलती कर दी, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो गुस्से में आकर के हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, और ऐसे शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कहने वाला शायद भूल जाए, सुनने वाला तो जीवन भर नहीं भूल पाता, और उसका असर हमारे संबंधों पर आ जाता है। संबंधों में प्रेम खत्म, कई बार संबंध टूट भी जाते हैं, पर कितना समय गुस्सा करते हैं हम? 2 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा समय का गुस्सा नहीं होता है। थोड़े समय के क्रोध के परिणाम कई बार व्यक्ति को जीवन भर तक भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए कहा कि नेगेटिव थॉट्स होते कम हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, विष की तरह काम करता है। जैसे विष की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी मात्रा में ही विष अपना काम कर देता है। तो ये जो भी नकारात्मकता है वो हमारे जीवन में दुख और अशांति लाती है, तनाव पैदा करती है, और आज मेडिकल साइंस कहती है कि 70% बीमारियां साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं, यानी मन का प्रभाव हमारे शरीर पर आता है और उसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना, ये सब जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसका कारण ये। क्योंकि हम सारे दिन में कितनी बार नेगेटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम नेगेटिव हो जाते हैं, और जिसका हमें भान भी नहीं रहता, और उसका प्रभाव हमारे मन पर तो आता ही है। मन अशांत होता है, दुखी होता है, टेंशन में आ जाते हैं, और फिर हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव आता है। तीसरे प्रकार के जो विचार, चौथे प्रकार के जो विचार हैं वो हैं पॉजिटिव, यानी श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक विचार। ये विचार भी हम करते हैं लेकिन वो ये भी कम चलते हैं। जैसे नकारात्मक विचार कम होते हैं, पावर ज्यादा होती है, ऐसे ही शुद्ध विचारों की भी शक्ति ज्यादा होती है। शुद्ध विचार वैल्यू बेस्ड थॉट्स होते हैं, यानी जब हम शांति, प्रेम, स्नेह, सहयोग की भावना से करुणा, दया, क्षमा के भाव रखते हुए सेवा भाव ये रखते हैं, तो ये सकारात्मकता है। और जब भी हम इस चिंतन में होते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, शक्तिशाली होता है, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो हम सकारात्मक विचार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मन में अच्छे विचार चले, लेकिन चाहते हुए भी नहीं चल पाते। माना ये कहना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जंगल हमें उगाने नहीं पड़ते हैं, जंगल तो अपने आप उग जाते हैं, लेकिन अगर हमें फूलों का बगीचा लगाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के फूलों के बगीचे नहीं हो सकते। तो ऐसे ही मन में कोई भी विचार चलते रहे, वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मन में श्रेष्ठ विचार चलें, मन में शुद्ध विचार चलें, सकारात्मक विचार चलें, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है, यानी अपने मन को हमें समय देना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब हम अपने मन को सुमन बना सकते हैं। लेकिन आज की जीवन शैली कैसी है, अगर हम चाहते हुए भी ये अच्छे विचार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, व्यक्तियों का, वातावरण का, परिस्थितियों का, हम ज्यादातर परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, जैसे परिस्थितियां मन को चलाती हैं वैसे मन चलता है। आज हम सुबह सुबह उठते ही संसार समाचार देखते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल माना सोशल मीडिया है, हम टेलीविजन देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो उसमें जो न्यूज होती है वो क्या न्यूज होती है, दुनिया की सबसे बुरी खबरें वो मीडिया की सबसे अच्छी खबरें होती हैं। और अगर हमारे दिन की शुरुआत हमने उन खबरों से की तो हमने अपने अंदर क्या लिया, सारी रात हम सोकर सुबह जब उठते हैं तो मन शांत होता है और मन में वो शक्ति भी होती है, लेकिन ऐसी ऐसी खबरें सुन के हमने अपने मन को कमजोर कर दिया। पुराने जमाने में जो लोग थे वो कभी भी अपने दिन की शुरुआत संसार समाचार से नहीं करते थे, भक्ति पूजा पाठ ध्यान भजन सत्संग से करते थे। तो सुबह सुबह मन को जब हम शुद्ध विचार देते हैं, ये शुद्ध ऊर्जा देते हैं, तो वो पूरे दिन पर उसका प्रभाव रहता है। लेकिन अगर सुबह ही हमारा मन कमजोर हो गया तो फिर सारा दिन जो भी परिस्थितियां आएंगी उन परिस्थितियों में हम अपना धैर्य नहीं रख पाते, शांति नहीं रख पाते, छोटी छोटी बात में चिढ़ना, नाराज होना, गुस्सा होना, ये बहुत सामान्य सी बात हो जाती है हमारे लिए। तो फिर हम अपने आप के लिए सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी मेरा स्वभाव ऐसा क्यों होता जा रहा है, क्योंकि मन को जो हम भोजन दे रहे हैं, जैसे शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर को वो पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन हमें देना होता है। तो अगर मेरा मन स्वस्थ रहे तो उसके लिए मन को भी हमें ऐसा ही भोजन देना होगा, ऐसे ही विचार मन को देने होंगे, और उसका स्रोत संसार समाचार नहीं है, उसका स्रोत है आध्यात्मिक ज्ञान और सत्संग, उसके लिए भी हमें रोज समय देने की आवश्यकता है, तब हम मन में वो श्रेष्ठ विचार परिस्थितियों के अनुसार ला सकते हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति चाहे तो हमें दुखी कर देता है, कोई परिस्थिति चाहे तो हमें दुखी कर देती है, या परिस्थिति जिस दिशा में मेरे मन को ले जाना चाहे उस दिशा में ही ले जाती है। लेकिन परिस्थितियों के मालिक बनना, यानी हम चाहें तो उन्हें परिवर्तन कर लें अपने मन की शक्ति से, ये है मन पर नियंत्रण, जो हम राजयोग का अभ्यास करके अपने मन पर नियंत्रण कर पाते हैं। आत्मा की दूसरी शक्ति है संस्कारों की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति, विश्लेषण करने की शक्ति है, और सोचने समझने की, जैसे हम कहते हैं सोच समझ कर कार्य करो, तो समझना वो हमारी बुद्धि के द्वारा, जिसे हम विवेक या विस्डम कहते हैं। जब भी हम सोचते हैं हम सीधा ही उसको कर्म में नहीं लाते, हमारी बुद्धि से हम समझते हैं ये सही है या गलत है, अगर हमें लगता है ये सही है तो हम उसे कर्म में लाते हैं, अगर लगता है नहीं ये करने से परिणाम बुरे हो सकते हैं तो फिर हम दूसरी दिशा में सोचना शुरू करते हैं। इसीलिए कोई भी बुरा विचार हम तुरंत कर्म में नहीं लाते हैं। जीवन में जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हम पहले अंतर द्वंद से गुजरते हैं। मन और बुद्धि के बीच में एक डायलॉग चलता है और उसके बाद जो पावरफुल है वही निर्णय बुद्धि लेती है। मानो एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, कोई भी अच्छी आदत या बुरी आदत जो बनती है हमारी, हम कैसे निर्णय लेते हैं। मानो कोई पहली बार शराब पीता है, अब वो ज्यादातर पार्टीज में दोस्तों के साथ बैठे हैं और दोस्त पी रहे हैं, ऐसा अवसर है और वो आपको भी ऑफर करते हैं, जिसको पीयर प्रेशर कहते हैं, कि वो हुआ, आपको ऑफर किया गया तो आप तो नहीं पीते हैं, तो आप सोचेंगे कि नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन मन उस समय मानो दोस्तों के प्रभाव में तो सोचेंगे चलो एक बार पीने में क्या होता है, एक बार तो पी सकते हैं, फिर नहीं पिएंगे। फिर बुद्धि कहेगी, विवेक से समझ है ना कि नहीं, ये हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है शराब, तो फिर ये भी फिर मन कहेगा अरे एक बार में थोड़ी हेल्थ खराब हो जाएगी। फिर ये भी सोचेंगे कि इससे धन का व्यय होता है, धन की बर्बादी है। फिर मन कहेगा धन कमाते किस लिए हैं, खर्च करने के लिए ही तो कमाते हैं। अच्छा, फिर समाज में किसी को पता चलेगा तो, क्योंकि निश्चित है शराब कोई अच्छी आदत तो नहीं है, तो फिर जो इसमें से पावरफुल है, अगर व्यक्ति का विवेक शक्तिशाली है तो कितना भी दोस्त कहेंगे, कितना भी पार्टी का माहौल है, लेकिन वो शराब नहीं पिएगा। लेकिन अगर मन पावरफुल हो जाता है, मन हावी हो जाता है, तो फिर कितनी भी समझ है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, व्यक्ति वो काम कर लेता है। तो आज हम देखते हैं कि समाज में जो भी गलत काम होते हैं या अपराध होते हैं, ऐसा नहीं उनको नहीं मालूम है कि ये गलत है, मालूम होता है, लेकिन मन हावी हो जाता है। और जब मन हावी होता है वो विवेक को दबा देता है और व्यक्ति वो गलत काम या अपराध कर लेता है। तो ये बुद्धि की शक्ति का विकास भी ज्ञान से होता है। जितना आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में है वो विवेक को शक्तिशाली बनाता है, दिव्य बनाता है। और इसीलिए देखा गया कि जो आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं उनका जीवन अधिक संयमित होता है, वो अपनी इंद्रियों पर बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं और आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कारों की शक्ति। संस्कार हमारे जो आदतें, जिन्हें साधारण भाषा में हम आदत कहते हैं, यानी जो कर्म हम बार बार करते हैं, एक बार हमने निर्णय ले लिया फिर हम वही कर्म बार बार करते हैं, तो वही हमारा संस्कार या आदत बन जाती है। संस्कारों के अनुसार ही किसी को महात्मा कहते हैं, महान कर्म करने वाले माना महात्मा। किसी को हम पुण्य आत्मा कहते हैं, यानी पुण्य कर्म करने वाले पुण्य आत्मा। किसी को हम देवात्मा कहते हैं, किसी को हम पापात्मा कहते हैं। हालांकि कर्म तो आत्मा शरीर से करती है, तो भी हम पाप शरीर, पुण्य शरीर, महान शरीर नहीं कहते, लेकिन ये टाइटल आत्मा को मिलता है क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है। इसीलिए महात्मा, पुण्य आत्मा, पापात्मा हम कहते हैं, क्योंकि संस्कार आत्मा में ही है और संस्कारों का प्रभाव आत्मा पर ही पड़ता है और यही संस्कार आत्मा अपने आगे जन्म में भी ले जाती है। तो संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक तो है ओरिजिनल संस्कार, मूल संस्कार जिनसे आत्मा बनी है, और दूसरे प्रकार के संस्कार हैं एक्वायर्ड, यानी कर्मों के प्रभाव से जो संस्कार आत्मा में बनते हैं। तो जो मूल संस्कार हैं आत्मा के, वो बहुत शुद्ध हैं, सकारात्मक हैं। ये सात गुण हैं, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति। ज्ञान प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता और शक्ति, ये सात आत्मा के निजी संस्कार हैं। जैसे हम कहते हैं ये शरीर पंच तत्वों से बना है, यानी अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी से शरीर का निर्माण हुआ है, तो इस शरीर को चलाने के लिए भी इन पांच तत्वों की ही आवश्यकता है। हमें जल चाहिए, 70% हमारा शरीर जल से बना है, जल है हमारे शरीर में, तो प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। अगर कोई हमें डीजल पेट्रोल दे दे या ऑयल दे दे, ये भी तो लिक्विड है, आप पी लो इससे प्यास बुझा लो, तो क्या होगा, वो हमारे लिए पॉइजन हो जाएगा। तो वो हमारे शरीर की प्रकृति में नहीं है, इसीलिए हमें पानी ही चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पानी से ही बना है। ऐसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास लेते हैं अपने अंदर हवा के रूप में, और भी गैसेस हैं वायुमंडल में, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन अगर हमने वो गैस ले ली तो वो भी हमारे लिए पॉइजन हो जाते हैं। ऑक्सीजन ही चाहिए, और वो भी अगर 5-7 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो मृत्यु हो जाती है। तो जो शरीर की प्रकृति में है वही उसकी आवश्यकता है। तो ऐसे ही आत्मा इन 7 गुणों से बनी है, यही हमारी आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए जीवन में हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। कोई कहेगा मुझे सुख शांति नहीं चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, देश का हो, हर एक को, क्योंकि ये आत्मा का अपना निजी गुण है, या हम इसको स्वधर्म भी कहते हैं, ये आत्मा का धर्म है। और इसीलिए कई बार हम कहते हैं सभी धर्म तो हमें एक जैसी शिक्षा देते हैं, क्योंकि हर एक को, अगर कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है तो क्या उसको प्रेम सुख शांति नहीं चाहिए, उसे भी वही चाहिए जो एक हिंदू को चाहिए। तो आत्मा का धर्म हमें वही सिखाता है कि सभी को प्रेम करो, शांति से रहो, हर एक को सुख दो। और इसीलिए हम कहते हैं सभी धर्म तो एक जैसी शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये आत्मा का अपना धर्म है। तो हम सब आत्माएं शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, और यही हमें चाहिए। जीवन में अगर अशांति हो जाए, चलो एक दिन दो दिन कोई सहन कर लेगा, लेकिन लंबे समय तक अशांति चलेगी तो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, किसी आश्रम में जाएंगे, मन को शांति मिले, कोशिश करेंगे किसी भी तरह से मन शांत हो, बाहर जाकर के भी ढूंढेंगे। हालांकि शांति कोई ढूंढने की चीज नहीं है, जैसे कहते हैं मृग होता है उसकी कुंडली में कस्तूरी होती है, खुशबू आती है उससे, तो वो पूरे जंगल में दौड़ता है खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन खुशबू तो उसकी अपनी कुंडली से ही आ रही है। तो ऐसे ही शांति हम ढूंढते हैं बाहर, लेकिन शांति तो हमारे मन की स्थिति है। मन की स्थिति है यानी मन को हम शांत करेंगे, मन को हम श्रेष्ठ दिशा में ले जाएंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। आज जो भी सुख है वो भी हमारे मन की स्थिति है। हम साधनों में सुख ढूंढते हैं, सुविधाओं में सुख ढूंढते हैं, कोई प्राप्ति इच्छाएं पूरी कर लें उसमें सुख ढूंढते हैं, लेकिन वो भी हमें तब तक सुख दे रहा है जब तक मेरा मन सुखी है। मानो आप किसी पार्टी में जाते हैं और पार्टी में बहुत स्वादिष्ट भोजन भी परोसा गया है, आप दोनों का आनंद ले रहे हैं, पार्टी में आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, बहुत खुशी होती है आपको, ऐसा माहौल भी बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट भोजन है उसका भी आप सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और उसी समय आपको खबर मिलती है कि आपके जो सो एंड सो नियर एंड डियर हैं उनका एक्सीडेंट हो गया या उनकी मृत्यु हो गई या उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, माना बुरी खबर, कोई भी ऐसी कोई बुरी खबर मुझे मिल जाए तो क्या होगा? क्या अब वो पार्टी मुझे अच्छी लगेगी या वो स्वादिष्ट भोजन में मुझे स्वाद आएगा? नहीं, हम भोजन भी छोड़ देंगे, वो पार्टी भी छोड़ करके निकल जाएंगे। तो पार्टी का माहौल नहीं बदला, भोजन का स्वाद भी नहीं बदला, लेकिन क्या बदल गया? मेरा मन। और जैसे ही मेरा मन बदल गया, जो चीजें मुझे पहले सुख दे रही थी वही चीजें अब मुझे सुख नहीं देती हैं। तो ये मन की स्थिति है, मन की स्थिति से ही हम सुख दुख शांति अशांति का अनुभव करते हैं। तो मन के परिवर्तन की ही बात है। तो हम देखते हैं आज सुख चाहिए हमें, सुख है तो जीवन सहज लगती है, दुख के चार दिन भी हमें भारी लगते हैं। इंसान दुख से दूर होने का प्रयास करता है, दुख दूर करने की कोशिश करता है, भगवान को भी याद करते हैं, और अगर दुख कष्ट दूर नहीं होते तो फिर क्या कहना शुरू कर देते हैं, भगवान ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है, अब आगे कहने की जरूरत नहीं है। और कई तो क्या करते हैं, सचमुच अपने को मुक्त कर देते हैं, अपना जीवन खुद ही समाप्त कर देते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं भी दुनिया में होती हैं। तो इसका मतलब दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो सुख से जीना चाहती है। सुख में मनुष्य कहेगा मेरी आयु जितनी लंबी हो उतना अच्छा है। ऐसे ही प्रेम चाहिए हमको, प्रेम से हम रहते हैं, आपस में प्रेम का व्यवहार है तो जीवन अच्छा लगता है। और अगर कोई हमसे नफरत करता है, हमारा अपमान करता है, वैर रखता है तो हमें पसंद नहीं आता। अगर मजबूरी नहीं है तो हम उस व्यक्ति से दोबारा मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। और इसीलिए कई बार देखते हैं कि अगर प्रेम नहीं मिलता, मानो परिवार में है, बच्चे हैं, माता पिता अपने बच्चों को प्रेम नहीं दे पाते, कई बार इतने व्यस्त रहते हैं या कई और कारण होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, कहीं और प्रेम ढूंढते हैं, घर छोड़कर ही चले जाते हैं। कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उसकी भी परवाह नहीं करेंगे, पर आत्मा को प्रेम चाहिए तो वो प्रेम के पीछे कहीं भी चली जाएगी। हमें शक्ति की आवश्यकता है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम ये नहीं कहते इतनी कमजोरी हमें देना दाता, कभी कहा किसी ने? तो हर इंसान शक्ति प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से भी हो। सामाजिक रूप से भी हम शक्तिशाली रहना चाहते हैं। और इसीलिए ये कहावत है दुनिया में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। समाज में जो शक्तिशाली है उसकी हर बात मानी जाती है, उसकी ही चलती है। ऐसे ही हम पवित्रता, ये जो आत्मा का स्वभाव है, पवित्रता माना मन की शुद्धि, सच्चाई, सफाई। तो हम देखते हैं जो सच्चे ईमानदार लोग हैं वही हमें पसंद आते हैं, हमारे विश्वास पात्र होते हैं, चरित्रवान होते हैं, संत होते हैं, उनके चरणों में भी हम झुक जाते हैं। लेकिन जो इसके विपरीत होते हैं, जो चरित्रहीन हैं या चोर डाकू हैं, उनसे सब दूर रहते हैं, उनसे व्यक्ति नफरत करता है। तो हमारा स्वभाव, भले हम नहीं होंगे सच्चे, लेकिन हमारा झुकाव ऐसे लोगों की ओर ही होता है। इसका मतलब यही मेरा स्वभाव है। तो ये सात गुण आत्मा अपने जीवन में चाहती है। लेकिन जो हम कर्मों से अपने संस्कार बनाते हैं, उससे ये हमारे निजी संस्कार दब जाते हैं। तो हम इन्हें कभी अनुभव करते हैं, कभी नहीं भी अनुभव करते हैं। और हमारे जो कर्मों के बने हुए संस्कार हैं, वो भी चार प्रकार से बनते हैं। हमारा परिवेश, जहाँ हमारी परवरिश होती है, यानी जिस कुल में हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता हमें संस्कार देते हैं, शिक्षा से हमें संस्कार मिलते हैं, वातावरण, संघ का प्रभाव होता है। इसीलिए कहते हैं जैसा संघ वैसा रंग। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य की पहचान उसके संघ से होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि अच्छे व्यक्ति बुरे संग में पड़ गए तो वो भी बुरे दिशा में चलने लगते हैं, और एक बुरा व्यक्ति अच्छे संग में आ गया तो उसका जीवन भी पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। ऐसे अनेक मिसाल हैं इतिहास में। डाकू अंगुलीमाल, वो महात्मा बुद्ध के संग में थोड़ा समय के लिए आया और वो खूंखार डाकू से भिक्षु बन गया। ऐसे ही वाल्मीकि की कहानी है, डाकू रत्नागर थे वो, और नारद मुनि के संपर्क में आए तो इतने महान संत बन गए। तो संग का असर भी मनुष्य के संस्कारों पर होता है, और कुछ पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रभाव भी आत्मा पर होता है, क्योंकि आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है, अपने कर्मों के प्रभाव ले जाती है। तो हम कई बार देखते हैं कुछ बच्चे बहुत कम आयु में भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, असाधारण कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। हमारे यहाँ ही एक छोटा बच्चा आया था, उसका नाम था कौटिल्य। 5 साल की उम्र में ही, आप में से भी बहुतों ने सुना होगा उसके बारे में, उसे गूगल बॉय कहते थे, यानी उसको सारी दुनिया के कोई भी सवाल पूछ लो आप, गूगल सर्च करने में शायद आपको टाइम लग जाएगा, पर वो तुरंत तुरंत उसका जवाब देता था। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार आत्मा में काम करते हैं, उसके जो पिछले कर्म हैं उसके परिणाम स्वरूप इतनी जीनियस बुद्धि वो व्यक्ति को मिलती है। कई बार हम देखते हैं एक ही परिवार में 2-3 बच्चे हैं, बाकी सब कुछ समान है, माता पिता वही हैं, घर का वातावरण वही है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही जैसा भोजन करते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव उल्टे, एकदम विपरीत। एक स्वभाव से बहुत शांत है, आज्ञाकारी है, बहुत स्टूडियस है, और दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत होगा, यानी आप कितनी भी कोशिश कर लो उसका पढ़ाई में मन लगता नहीं। अब माँ बाप की तो सबके प्रति शुभ भावना होती है कि सभी बच्चों का भविष्य ऊंच बने, श्रेष्ठ बने, लेकिन फिर भी अंतर होता है, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर होता है। और करीब 14 साल तक की आयु तक पूर्व जन्म के संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, यानी आप कुछ भी उनको समझाएंगे वो उस समय समझ लेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, संस्कार काम करते हैं। बाद में जब उन्हें खुद रियलाइज होता है कि ऐसे संस्कारों से उनका भविष्य खराब हो सकता है, और वो फिर स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, तो कई परिवर्तन भी हो जाते हैं। हमारे हेरिडिटरी से भी, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर, वो भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। और विल पावर, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो फिर बाह्य प्रभाव जो भी है, चाहे वो कैसा भी परिवेश है, कैसा भी संग है, पूर्व जन्म के भी कोई संस्कार है, उनसे अप्रभावित रहकर व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करता है, चाहे कितने भी संघर्ष और कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसे भी मिसाल हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानते हैं, मदर टेरेसा के बारे में हम जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में हम जानते हैं, इनके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां रही, लेकिन इनकी विल पावर, इच्छा शक्ति इतनी अधिक थी कि इन्होंने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो विल पावर से हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, और राजयोग अभ्यास से भी आत्मा अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकती है, अपने निजी संस्कारों को विकसित कर पाती है, और वही फिर हमारे व्यवहार में आते हैं। आत्मा का स्थान शरीर में भ्रकुटी में है, मस्तक के मध्य में, इसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक ड्राइवर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठकर ही ड्राइव करता है, उसका स्थान निश्चित होता है, वो पीछे की सीट पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो साधन है गाड़ी को कंट्रोल करने के, एक्सीलरेटर, ब्रेक, व्हील, वो सब आगे ड्राइविंग सीट पर है। तो ऐसे ही आत्मा का स्थान भी शरीर में निश्चित है। यहाँ से आत्मा पूरे शरीर को सहज कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और उसमें भी मुख्य जो कंट्रोल रूम मस्तिष्क है वो सब यहाँ पर ही है। यानी हमारा जो मुख है वो सब इंद्रियों का स्थान है, मुख्य इंद्रियों का स्थान है, और इसीलिए आत्मा का स्थान मस्तक के मध्य में, भ्रकुटी में आत्मा का निवास है। यहाँ से वो इन सब शरीर की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर पाती है। आत्मा का स्थान हृदय में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा हृदय में निवास करती है, लेकिन हृदय तो ब्लड पंप करने का एक ऑर्गन है। हृदय ब्लड को बनाता भी नहीं है, ब्लड को शुद्ध भी नहीं करता है, लेकिन सिर्फ ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। उसमें कोई भावनाएं नहीं है। भावनाएं तो विचारों से बनती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। मानो हम गहरे सोच में हैं, तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? हम सीने पर हाथ नहीं रखते, कहाँ रखते हैं? यहाँ रखते हैं। इसका मतलब सोच कौन रहा है? मन आत्मा की शक्ति है, तो मन सोच रहा है। ऐसे ही कर्मों की बात हम करते हैं तो भी हाथ यहाँ रखते हैं, यानी कर्म से जिसका संबंध है वो भी यहाँ है। भाग्य की बात करते हैं तो भी यहाँ हाथ रखते हैं, यानी भाग्य से जिसका संबंध है उसका स्थान भी यहाँ है। तो आत्मा प्रकृति में निवास करती है, हृदय में नहीं। हृदय तो आज ऑपरेशन हो जाता है, बाईपास सर्जरी हो जाती है, हृदय तो आज ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो क्या वो आत्मा बदल गई? आत्मा का ऑपरेशन हो गया, हम क्या कहेंगे? तो हृदय में आत्मा नहीं निवास करती, और शरीर में भी व्यापक नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी मानते हैं कि आत्मा पूरे शरीर में व्यापक है। नहीं, आत्मा अपने स्थान पर है, लेकिन पूरे शरीर को वो शक्ति देने वाली है। जैसे हम कहते हैं पावर सोर्स एक होता है, लेकिन उसकी सप्लाई फिर जहां भी करना चाहे वो सप्लाई होती है। तो राजयोग में जब हम अभ्यास करते हैं तो प्रथम हम अपना ध्यान यहाँ मस्तक के मध्य में आत्मा पर एकाग्र करते हैं, आत्मचिंतन हम करते हैं, क्योंकि आत्मा का स्थान प्रकृति में है। तो आत्मा जो है वो शरीर की ड्राइवर की तरह है, बॉडी एक कार की तरह है, आत्मा एक डायमंड की तरह है और शरीर एक बॉक्स की तरह है। तो वैल्यू किसकी होती है? डायमंड की होती है। बॉक्स कितना भी सुंदर हो लेकिन वैल्यू उसकी उस डायमंड से है। ऐसे ही आत्मा मूर्ति की तरह है और शरीर टेम्पल की तरह है। टेम्पल की भी वैल्यू उसमें विराजमान मूर्ति से होती है, तभी वो टेम्पल कहलाता है। आत्मा एक रथी है और शरीर रथ है, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली रथी। इसीलिए कोई शरीर छोड़ता है तो हम उसको अर्थी भी कहते हैं, यानी जिसका रथी चला गया वो अर्थी है। आत्मा एक एक्टर है और ये शरीर उसकी ड्रेस है। इस शरीर रूपी ड्रेस को पहनकर आत्मा रूपी एक्टर अपना रोल इस संसार में प्ले करती है। तो इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम तिलक कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं, या बिंदी लगाते हैं। हमारी बहनें वो कहाँ लगाती हैं? यहाँ लगाती हैं। तो ये आत्मा का ही प्रतीक है। आत्मा इस संसार में कहाँ से आई है? हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये जग मुसाफिर खाना है। तो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये भी एक प्रश्न होता है कई बार मन में। कहाँ से आए हैं हम इस दुनिया में, और मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, क्या होता है? तो शिव बाबा ने, परमात्मा ने ये भी राज खोले हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ आत्मा का स्थाई निवास स्थान है। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में तीन लोक हैं। पहला जो है वो यहाँ भौतिक जगत जिसमें पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह हैं, जिसे हम कॉस्मोस कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, और हमारे विज्ञान की पहुंच भी यहाँ तक ही है। इससे आगे हमारा विज्ञान भी पहुंच नहीं पाया है, और इसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, अनेक ग्रह उपग्रह में पृथ्वी भी एक ग्रह है, और केवल पृथ्वी पर ही ये सारा खेल चलता है। यानी जो जीवन है वो पृथ्वी पर ही है, और ये विशाल रंगमंच की तरह है। जैसे रंगमंच पर आत्माएं या जो एक्टर हैं वो अपना पार्ट प्ले करते हैं, और पार्ट पूरा होने के बाद वो अपना ड्रेस चेंज करके अपने घर जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा आती है, शरीर रूपी ड्रेस पहनती है, अपने कर्म करती है, यानी अपना पार्ट प्ले करती है, और जब वो पूरा हो जाता है तो ये शरीर रूपी ड्रेस को यहीं छोड़कर फिर हम वापस अपने घर जाते हैं। तो ये है भौतिक जगत, यानी साकार मनुष्य लोक इसे कहते हैं। और जो दूसरा लोक है वो है सूक्ष्म लोक। आत्मा को ये हड्डी मांस के शरीर के साथ साथ एक प्रकाश की काया भी होती है, जिसे लाइट का शरीर या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में होती है, तो वो सूक्ष्म लोक सूक्ष्म शरीर का स्थान है। और तीसरा जो लोक है वो है परम धाम या सोल वर्ल्ड, इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परलोक आदि अनेक नाम से हम जानते हैं। तो आप देख रहे हैं परम धाम जो है वो उसका रंग है सुनहरी लाल प्रकाश। ये ब्रह्मलोक है क्योंकि ये ब्रह्म महातत्व से बना है, ये छठा तत्व है। पांच तत्व इस भौतिक जगत के हैं, और छठा तत्व परम धाम जो परमात्मा का भी धाम है, जो आत्माओं का मूल निवास स्थान है, उसका रंग है। और ये स्व प्रकाशित तत्व है, यहाँ पर सूर्य चांद तारों के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ब्रह्मलोक ये शांति धाम है क्योंकि यहाँ संपूर्ण शांति है, यहाँ पर दुनिया की कोई आवाजें नहीं पहुँचती हैं, आवाज से परे की दुनिया है, इसीलिए इसे शांति धाम कहते हैं। और आत्मा भी बिना शरीर के, बिना मुख के कोई आवाज नहीं कर सकती, तो वहाँ पर आत्मा अपने मूल रूप में अपनी पॉइंट ऑफ लाइट जो आत्मा का असली स्वरूप है, उस स्वरूप में ही आत्मा परम धाम में स्थित होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु स्वरूप आत्माएं एक आकार में वहाँ विराजमान है। इसे मुक्ति धाम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आत्मा मुक्त है कर्मों से, कर्मों के बंधन से, सर्व संबंधों से, देह से, सबसे पहले तो अपनी देह से, फिर देह के संबंध और देह के कर्म से पूरी तरह से मुक्त है आत्मा, इसीलिए इसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, जिसे लोग मोक्ष भी कहते हैं। ये निर्वाण धाम है क्योंकि वाणी से परे का स्थान है, इसे मूल वतन कहते हैं क्योंकि ये मूल निवास स्थान है, इसे सातवां आसमान भी कहते हैं। परम धाम यानी सबसे ऊंचा स्थान, उससे ऊंचा फिर और कोई स्थान नहीं है। तो आत्मा परम धाम निवासी है। तो राजयोग अभ्यास में हम अपने मन को परम धाम ले जाते हैं क्योंकि परम धाम से ही हम आत्माएं इस सृष्टि पर आई हैं। आत्मा होने का क्या प्रमाण है? क्योंकि आज विज्ञान की दुनिया में हम प्रमाण पर विश्वास करते हैं, तो कुछ प्रमाण हमें आत्मा के संबंध में भी मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने पूर्व जन्म को याद कर लेते हैं, सभी तो नहीं, ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कोई कोई केसेस में, दुनिया में रेयर केसेस में कोई अपने पूर्व जन्म की बातें बताते हैं, इसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं और इसके ऊपर काफी अध्ययन किए गए। तो ये देखा गया कि बच्चे जो पूर्व जन्म की बात बताते हैं वो काफी हद तक सही होती है, 70-80% वो सही होता है, जो अपना जन्म स्थान, अपने रिश्तेदार, अपना घर, अपने मित्रों के बारे में जो बताते हैं। तो आत्मा ने अपना पूर्व जन्म कैसे याद किया? क्योंकि अगर केवल शरीर ही अस्तित्व है, आत्मा नहीं है, तो शरीर के समाप्त होने के साथ उसे जला दिया गया या दफना दिया गया, तो वो पुरानी स्मृतियां तो ब्रेन के साथ खत्म हो गई। इस नए शरीर में तो नया ब्रेन है, नया मस्तिष्क है, तो उसमें फिर पुराने जन्म की स्मृतियां कहां से आ गई? तो जरूर आत्मा है जिसने ये नया शरीर लिया, और उस आत्मा में वो रिकॉर्ड है, उसमें वो स्मृतियां हैं जो जागृत हो जाती हैं किन्हीं कारणों से, और वो अपने पूर्व जन्म की बात बताते हैं। तो ऐसे अनेक मिसाल हैं, अभी हम उतना विस्तार में नहीं जा सकते, इसलिए मैं उदाहरण नहीं दे रही आपको, लेकिन पूर्व जन्म सिद्ध करता है कि आत्मा का अस्तित्व है, तभी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को याद कर पाता है। और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं कई बार कईयों को, शरीर से बाहर होने का अनुभव, खासकर जब किसी के जीवन में कोई दुर्घटनाएं होती हैं, अनायास दुर्घटना हुई और मृत्यु जैसी स्थिति पैदा हो गई, यानी बहुत मृत्यु के निकट है, नियर डेथ हो जाते हैं। आजकल तो ऐसे साधन हैं विज्ञान के जो मृत्यु के निकट व्यक्ति को भी फिर से जीवित कर लिया जाता है, रिससिटेट कर लेते हैं, तो फिर वो अपने उस शरीर के बाहर के अनुभव को याद करते हैं कि जब हम लगभग मृत हो चुके थे तो हमने देखा कि मैं आत्मा शरीर के बाहर आ गई और मैं एक टनल से गुजर रही हूँ। जो ज्यादातर लोग अनुभव बताते हैं, उस पर एक किताब लिखी है डॉक्टर रेमंड बूडी, ये अमेरिका के इमरजेंसी के डॉक्टर यानी कैजुअल्टी डॉक्टर रहे, और इन्होंने ऐसे लोगों के अनुभव अपनी बुक में लिखे हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ वो किताब मिलती है, उसमें उन्होंने करीब लगभग 100 लोगों के ऐसे अनुभव लिखे हैं कि उन्होंने मृत्यु की निकटता में कैसा अनुभव किया। तो हरेक अपने आप को लाइट अनुभव करते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं जब वो शरीर से बाहर होते हैं, जैसे कि उनको वो जो चाहते थे वो उनको मिल गया, यानी बहुत बंधनों से, सजाओं से उनको मुक्ति मिल गई, और फिर वो एक सुप्रीम लाइट से मिलते हैं, और वो लाइट जो है वो जैसे प्यार का सागर है, और उससे मिलकर फिर वो उससे अलग नहीं होना चाहते, लेकिन वो गाइडिंग लाइट ही उन्हें फिर वापस दुनिया में भेज देती है। ज्यादातर के ऐसे अनुभव हुए। ऐसे ही हिप्नोटिक रिग्रेशन एक टेक्निक है। हिप्नोटिक रिग्रेशन खासकर साइकेट्रिस्ट जो हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो इलाज के लिए इसको प्रयोग करते हैं, पूर्व की स्मृतियों में ले जाना, क्योंकि कई मरीजों को ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, अनेक प्रकार के भय होते हैं, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को चाकू से डर लगता है, अलग अलग। तो वो उनको कई बार बचपन की स्मृतियों में ले जाते हैं, और ये भी देखा गया कि जब वो उन्हें बैक ले जाते हैं तो पूर्व जन्म तक आत्मा चली जाती है। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, जो अपने यहाँ डॉक्टर्स की टीम है उसमें एक अमेरिकन डॉक्टर है, उन्होंने अपने उसमें प्रयोग किए कई हिप्नोटिक रिग्रेशन के, मैंने कहा ना जैसे डॉक्टर्स ये करते हैं मरीजों के इलाज के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक लेडी थी, उसको कमर में दर्द रहता था, और बहुत कमर में दर्द रहता था, उसकी सारी चेकिंग हो गई सब, लेकिन कोई उसमें चेकिंग में खराबी नहीं निकली, कमर में सारी रीढ़ की हड्डी पूरी नॉर्मल है, लेकिन क्यों दर्द होता है समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उनके फिजिशियन, उनके ऑर्थोपेडिशियन ने उनको बोला कि ये आपकी मानसिक समस्या है, आप साइकेट्रिस्ट को मिलो, वो आपको मदद कर पाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो जब वो साइकेट्रिस्ट से मिली तो उसने कहा कि मैं आपको दवाई देने से पहले आपको रिग्रेशन में ले जाऊंगा, आपको पूर्व की स्मृतियों में ले जाऊंगा, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ये दर्द क्यों हो रहा है। तो जब वो उसको रिग्रेशन में ले गया तो वो दोनों जन्म के बीच की जो मृत्यु का समय था उसमें उसने बताया कि वो पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु कार एक्सीडेंट से हुई। वो कार एक्सीडेंट में जो उसको चोट लगी वो पीठ पर लगी, और इतनी जोर से उसको वो चोट लगी थी और इतना दर्द हुआ था और उसी दर्द में उसकी मृत्यु हो गई। यानी आत्मा जब शरीर से निकली तो वो दर्द की फीलिंग लेकर के शरीर से बाहर निकली, और अब इस नए शरीर में भी उसकी वो फीलिंग बनी हुई है, हालांकि वो रीढ़ की हड्डी तो अभी बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब उसने ये समझ लिया कि ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है, फिर उसको उसी अनुसार काउंसलिंग की गई, साइकोथेरेपी दी गई, तो उसका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये प्रमाणित करता है, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृतियों को याद कर पाना ये कौन कर पाएगा, शरीर तो नहीं कर सकता, शरीर तो नया है, तो जरूर आत्मा है, वही वो ये स्मृति में ला सकती है और वो सारा बताती है। तो ये आत्मा के प्रमाण हमें मिलते हैं। जो भी आत्मा का ज्ञान है, जब हम उसे अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं तो हमारी अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि आज जितने भी भेद हैं इस संसार में, जाति, धर्म, भाषा, देश, इसका व्यक्ति एक प्रकार का देह अभिमान लेकर चलता है ना। कोई अमेरिकन है तो सोचता है मैं अमेरिकन हूँ, यूरोपियन हूँ, भारतीय हूँ, अपनी जाति का मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं ऊंच कुल का हूँ, या शरीर का जो रंग है, शरीर का जो भान होता है, तो मैं गोरा हूँ, काला हूँ, या मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, मराठी हूँ, जो भी अपनी संस्कृति है, तो हर एक उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। या जो भी हम रोल प्ले कर रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, संपत्तिवान हूँ, पुत्रवान हूँ, या अगर घर में मैं पति हूँ या पत्नी हूँ, बेटा हूँ, जो भी हम रोल प्ले करते हैं, तो ये सारे जो हमारे भान हैं और जिसको लेकर के कई बार व्यवहार में हमारी त्रुटियां होती हैं, जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं और एक दूसरों को भी जब हम आत्मा समझते हैं तो हमारे व्यवहार में वो समानता आने लगती है। देह की सीमाओं से हम ऊपर उठने लगते हैं, और ये जीवन की जो देश, जाति, भाषा, धर्म की समस्याएं हैं, जो समाज की काफी बड़ी समस्याएं हैं वर्तमान समय में भी, इसको लेकर के कितना लड़ाई, झगड़ा, विषमताएं समाज में फैली हुई हैं, ये सब समाप्त हो सकती हैं जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तभी आत्मिक गुणों का विकास हमारे जीवन में होता है। देह अभिमान विकारों की जड़ है, लेकिन आत्मभान वो गुणों का विकास करता है, यानी शांति, प्रेम, सुख और शक्ति, ये हमारे जीवन व्यवहार में सहज आने लगते हैं। और इसीलिए राजयोग अभ्यास में हम अपनी ये स्मृति, वृत्ति और दृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो अभी हम जो हमने अपना स्वयं का सत्य परिचय समझा, मैं शरीर नहीं लेकिन एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ जो इस शरीर से कार्य कराती है, आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु चमकते हुए सितारे के समान है, जिसका टेम्परेरी एड्रेस ये भ्रकुटी है शरीर में और परमानेंट एड्रेस परमधाम में निवास करती है। हम उसका आत्मचिंतन करते हुए अभ्यास करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठ जाएं और जैसे मैं विचार आपको दूंगी ऐसा ही चिंतन आप अपने मन में लाएंगे, उसे अनुभव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मन इधर उधर जाए, लेकिन कोशिश करके मन को पुनः आत्मचिंतन के विचारों में ले आए। अपने मन को आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से न्यारा कर लें, आवाजों से भी न्यारा करें, आंखों को स्वाभाविक रूप से खुला रखें, चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। स्वयं को विचार दें, मैं एक चेतन शक्ति, दिव्य शक्ति, आत्मा हूँ, एक चमकते हुए सितारे के समान। मैं प्रकाश पुंज हूँ, मैं अचर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में एक मूर्ति की तरह हूँ और ये शरीर एक मंदिर है। मैं आत्मा रथी हूँ, ये शरीर मेरा रथ है, एक वस्त्र की तरह है जिसे मैंने संसार में कर्म करने के लिए धारण किया है। ये सृष्टि एक विशाल रंगमंच है और मैं आत्मा जो रोल मुझे मिला है, अपना रोल अपने पात्र का निर्वाह कर रही हूँ। अपने निजी स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति में ही सुख समाया है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शांति में ही शक्ति है, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम है। ले जाए मन को इस भौतिक जगत से पार, उस सुनहरी लाल प्रकाश के लोक में जो ब्रह्म लोक है, जहां सर्वत्र शांति है, जो इस दुनिया की आवाजों से परे शांति धाम है। यहां मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में, बिंदु रूप में अनुभव कर रही हूँ। परम धाम में मैं अपने कर्मों के बंधन से, देह से मुक्त हूँ। ये मुक्ति धाम है। मैं आत्मा अपने निजी स्वभाव को अनुभव कर रही हूँ, शांति, सुख, आनंद, बहुत हल्कापन, न्यारापन मुझे अनुभव हो रहा है। शांति धाम की शांति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः इस साकार लोक में अपनी भ्रकुटि के मध्य अनुभव कर रही हूँ। आज सारा दिन मैं स्वयं को आत्मा अनुभव करूंगी और जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उनको भी मैं आत्मिक दृष्टि से देखूंगी। ओम शांति शांति।